ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की कथित टिप्पणी पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर राज्यसभा को दिन भर के लिए और लोकसभा को दो बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद 2:15 पर फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के बीच सदन ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा के कुछ संशोधनों को स्वीकृति दे दी। विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है। हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि श्री शिवकुमार ने संविधान बदलने के बारे में कुछ नहीं कहा। उधर लोकसभा में भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण वर्ष 1947 में सभी प्रमुख नेताओं ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेता को उनके टिप्पणियों के लिए संवैधानिक पद से हटा देना चाहिए। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा आज शुरू हुई। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत पिछले 10 वर्ष में उज्जवल स्थान के रूप में उभरा है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था बहुत जटिल है। समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने कहा कि सरकार को बजट में अनुसूचित जातियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास में नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने का आह्वान किया है। श्री धनखड़ ने आज संसद भवन में इस मुद्दे पर सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। सभापति ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की प्रशंसा की। केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। संसद सदस्यों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज श्री चौहान ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क समाप्त होने से किसानों की उपज बिना शुल्क के वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेगी और उन्हें अधिक मूल्य मिल सकेगा।
किसान को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। और अब ये फैसला किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल पाए।
आज विश्व तपेदिक दिवस है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके टीबी में दवा प्रतिरोध से निपटना है। विशाखापत्तनम में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पांचवें दिन आज पावर लिफ्टिंग में महिलाओं के 55 किलो भार वर्ग में सुमन देवी और 61 किलो वर्ग में सीमा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 59 किलो में गुलफाम अहमद और 65 किलो में जॉबी मैथ्यू ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजों में मोना अग्रवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में हरियाणा पहले, तमिलनाडु दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है, दिल्ली सातवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।